एकत्रा ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है।
हाँ बिल्कुल, दावा ये कि इसमें दिए गए निबंध आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। किताब है 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक, और इसकी लेखिका हैं ब्रायना वीस्ट।
सोचने का तरीका बदलना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना?
बिल्कुल नहीं, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी भी लगता है। हम सब कभी ना कभी थोड़ा फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, शायद नौकरी में या रिश्तों में या बस यूं ही ज़िंदगी में।
सही बात है।
और अक्सर हम उंगली बाहर दिखाते हैं कि भाई हालात ख़राब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, या शायद लोग ठीक नहीं हैं। हाँ, ये आम है, पर ये किताब एक तरह से आईना दिखाती है, पूछती है कि क्या हो अगर असली गड़बड़ बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर हो, मतलब हमारे सोचने के अंदाज में। ये किताब इसी बुनियादी सवाल से जूझती है। तो अगर कोई भी जिंदगी में कुछ बदलना चाहता है या बस अपनी सोच के पैटर्न को बेहतर समझना चाहता है, तो मुझे लगता है ये चर्चा उनके लिए काफी काम की हो सकती है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से ही। ब्रायना वीस्ट कौन है, क्या बैकग्राउंड है उनका?
ब्रायना वीस्ट एक, कह सकते हैं, दिलचस्प शख्सियत हैं। वो अमेरिका की लेखिका और कवियत्री हैं।
अच्छा।
और खास तौर पर जानी जाती हैं भावनात्मक समझ, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, जिंदगी को देखने का नज़रिया और खुद को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर अपने गहरे लेखन के लिए।
हाँ, और उनकी खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई पारंपरिक साइकोलॉजिस्ट या एकेडमिक नहीं है।
सही।
उनकी ताकत है उनकी बारीक नज़र। वो इंसानी भावनाओं और अनुभवों को बहुत गहराई से देखती हैं और फिर उन जटिल बातों को बड़ी सरल, मतलब दिल को छू लेने वाली, लगभग पोएटिक भाषा में लिख देती हैं।
हाँ, जैसे कोई दोस्त आपसे जिंदगी की गहरी बातें कर रहा हो।
बिल्कुल। शायद इसीलिए वो इतनी लोकप्रिय भी हुई। थॉट कैटलॉग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके लेख काफी वायरल हुए थे।
हाँ, मैंने भी पढ़े हैं कुछ। वो सीधे समाधान या 5 steps to happiness वाले नुस्खे नहीं देती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, अपने अंदर झांकने के लिए उकसाती हैं। उनकी दूसरी किताबें भी हैं जैसे द माउंटेन इज यू, वो भी इसी तरह आत्मनिरीक्षण और भीतरी बदलाव की ही बात करती हैं।
ये वाकई उन्हें खास बनाता है। तो अब आते हैं इस किताब पर, 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक। इसका निचोड़ क्या है, मतलब क्या है ये किताब असल में?
जैसा नाम से ही पता चलता है, ये 101 छोटे छोटे निबंधों का एक कलेक्शन है।
ओके।
हर निबंध एक अलग विचार, एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। और ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप चैप्टर 1 से शुरू करें और आखिर तक एक क्रम में पढ़ें।
अच्छा।
हाँ, आप कहीं से भी खोल सकते हैं, कोई भी निबंध पढ़ सकते हैं जो आपको उस पल अपनी तरफ खींचे। एक तरह से विचारों का खजाना है ये।
दिलचस्प। और इन सभी निबंधों के पीछे का मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, सबसे बड़ा विचार?
सबसे बड़ा आइडिया, और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात भी है इस किताब की, कि बाहर की दुनिया कैसी है इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से कि आप उसे देखते कैसे हैं। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी नौकरी, आपके बैंक बैलेंस या आपके सोशल स्टेटस से तय नहीं होती, बल्कि आपके विचारों की क्वालिटी आपके नजरिए से तय होती है।
वाह, मतलब असली खेल बाहर नहीं, अंदर चल रहा है।
बिल्कुल। सच्ची खुशी और बदलाव बाहर की चीजें बदलने से नहीं आएंगे।
बिल्कुल।
वो आएंगे अपने अंदर की सोच, अपनी भावनाओं को समझने और अपने जो विश्वास है उनको परखने से, आत्म जागरूकता से।
तो ये किताब उन अदृश्य मानसिक धागों को खोलने में मदद करती है जिनसे हम अक्सर बंधे होते हैं, जैसे हमारे पुराने डर, हमारी लिमिटिंग सोच, समाज के दिए हुए पैमाने।
सही कहा। ये एक तरह से आत्म जागरूकता की यात्रा पर ले जाती है पाठक को, जहां आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, क्या ये वाकई सच है, या इसे देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है।
तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी मुश्किलें गायब कर दे।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक औजार है जो मुश्किलों से जूझने का तरीका बदल सकता है, उन्हें बोझ समझने के बजाय शायद विकास का एक मौका बना सकता है।
एग्जैक्टली। उन्हें ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट की तरह देखना।
बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के कुछ मुख्य हिस्सों या थीम्स पर बात करते हैं। आपने कहा 101 निबंध हैं, तो शायद कोई स्ट्रक्चर तो होगा।
हाँ, वैसे तो हर निबंध अपने आप में पूरा है, लेकिन हम उन्हें कुछ थीम्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। मान लीजिए पहले 25-30 निबंध का जोर हमारे बुनियादी विश्वासों और धारणाओं पर है।
अच्छा, हमारे विश्वास मतलब जो बातें हम सच मानते हैं, जैसे दुनिया कैसी है, हम कैसे हैं।
हाँ, और यहाँ ब्लीस्ट एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं कि हमारी बहुत सी इच्छाएं, हमारे बहुत से लक्ष्य असल में हमारे अपने होते हैं नहीं।
क्या मतलब?
मतलब वो हमें समाज, परिवार या संस्कृति से विरासत में मिलते हैं। जैसे अच्छा करियर बनाना है, बड़ा घर लेना है, सही उम्र में शादी करनी है, ये सब पैमाने अक्सर बाहर से आते हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या हम अनजाने में दूसरों के सपने जी रहे होते हैं?
कई बार हाँ, और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे ब्लीस्ट पहुंचने का भ्रम, अराइवल फैलेसी कहती हैं।
अराइवल फैलेसी।
हाँ, ये वो गलतफहमी है कि जब मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा, या जब मेरी शादी हो जाएगी, या जब मैं वजन कम कर लूंगी, तब मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगी।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन सोच है।
वीस्ट कहती हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, वो तो रास्ते में महसूस करने की चीज है, अभी इसी पल में।
ये बहुत गहरा है। मतलब हम हमेशा अगली चीज के पीछे भागते रहते हैं और ये सोचते ही नहीं कि क्या वो वाकई हमें खुशी देगी। ये पहला हिस्सा तो हमारी मतलब सोचने की नींव ही हिला देता है।
बिल्कुल, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो चाहते हैं वो असल में क्यों चाहते हैं।
तो अगर हमारे विश्वास हमारी सोच की नींव हैं, तो फिर उन विश्वासों से जो भावनाएं उत्पन्न हैं उनका क्या?
हाँ, तो वीस्ट किताब के अगले हिस्से में करीब निबंध 26 से 50 तक इसी पर फोकस करती हैं, भावनाओं को समझना और उन्हें इंटीग्रेट करना।
भावनाएं, खासकर जो नेगेटिव मानी जाती हैं, गुस्सा, डर, उदासी, हम अक्सर इनसे बचना चाहते हैं ना, इन्हें दबाना चाहते हैं।
और वीस्ट कहती हैं, यही हम गलती करते हैं। ये तथाकथित नकारात्मक भावनाएं दुश्मन नहीं, दोस्त हैं।
दोस्त कैसे?
वो संदेशवाहक हैं, मैसेंजर्स हैं, जो हमें कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रही हैं। जैसे गुस्सा शायद बता रहा हो कि आपकी कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है।
अच्छा।
डर शायद किसी आने वाले खतरे या अनिश्चितता का संकेत दे रहा हो। उदासी शायद किसी नुकसान या कमी का एहसास करा रही हो।
मतलब इन भावनाओं को महसूस करना जरूरी है, उन्हें इग्नोर करने के बजाय उन्हें सुनना जरूरी है।
बिल्कुल, ये तो हमारे सब चलता है वाले एटीट्यूड से बिल्कुल अलग है, जहां हम अक्सर भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं।
हाँ, या बस पॉजिटिव रहो कह देते हैं।
वेस्ट यहाँ भावनात्मक स्पष्टता या इमोशनल ग्रैनुलैरिटी की बात करती हैं।
इमोशनल ग्रैनुलैरिटी, ये क्या है?
यानी अपनी भावनाओं को ठीक ठीक पहचानना और नाम देना। सिर्फ बुरा लग रहा है कहने के बजाय ये समझना कि क्या आप निराश हैं, या थके हुए हैं, या शर्मिंदा हैं, या कुछ और। ये पहला कदम है उन्हें समझने और फिर संभालने का।
ये माने रखता है।
और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, बेचैनी का उद्देश्य।
बेचैनी का उद्देश्य, ये सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, पर वीस्ट का तर्क है कि आराम हमेशा अच्छा नहीं होता। असली विकास, असली सीख अक्सर आराम के दायरे से बाहर निकलने पर ही मिलती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं, तो थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी घबराहट। वीस्ट कहती हैं, ये बुरा संकेत नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं।
वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब अगली बार जब घबराहट हो तो शायद सोचना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ये तो कमाल है।
बिल्कुल, तो ये दूसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि इमोशनल मास्टरी का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं, बल्कि अपनी हर भावनाओं को समझना और उसे नेविगेट करना सीखना है।
समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर। आपने कहा था लगभग निबंध 51 से 75 जो हमारी पहचान और आदतों पर केंद्रित हैं।
हाँ, पहचान और आदतें, ये कैसे जुड़ी हैं?
वीस्ट कहती हैं, हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो फिक्स्ड नहीं है। हम कौन हैं, ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों और हमारी चुनावों से बनता है।
अच्छा,
आप जो लगातार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। तो अगर मुझे अपनी पहचान बदलनी है, जैसे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी।
हाँ, और यहाँ वो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का जिक्र करते हैं।
आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स
मतलब सिर्फ लक्ष्य बनाने के बजाय मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, उस पहचान को अपनाएं जो आप बनना चाहते हैं। मैं एक सेहतमंद और एक्टिव इंसान हूँ।
ओके।
फिर खुद से पूछें, एक सेहतमंद और एक्टिव इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा? वो शायद लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लेगा, या जंक फूड की जगह फल चुनेगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे चुनाव आपकी आदत बनेंगे और फिर आपकी पहचान का हिस्सा।
ये तरीका ज्यादा सस्टेनेबल लगता है, सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आइडेंटिटी को ही बदल लेना।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है जाने देना एक सक्रिय प्रक्रिया की बात।
लेटिंग गो, छोड़ देना।
हाँ, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, इन्हें छोड़ना कोई पैसिव चीज नहीं है। ये एक एक्टिव चुनाव है जिसमें हिम्मत लगती है। ये सिर्फ भूल जाना नहीं बल्कि जानबूझकर आगे बढ़ना है, पुरानी चीजों को रिलीज करना है।
ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर हम नई चीजें शुरू तो करना चाहते हैं पर पुरानी पकड़ छोड़ते नहीं।
सही कहा। तो ये तीसरा खंड हमें एक्शन लेने के लिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए प्रेरित करता है।
समझ गया। अब आखिरी हिस्सा, निबंध 76 से 101, वो किस बारे में?
ये हिस्सा एक तरह से सब कुछ समेटता है, अर्थ और जुड़ाव की तलाश पर फोकस करता है।
मीनिंग एंड कनेक्शन।
हाँ, यहाँ वीस्ट कहते हैं कि जिंदगी का असली मतलब बड़ी बड़ी कामयाबियों या अचीवमेंट्स में नहीं बल्कि रोजमर्रा के पलों में छुपा है।
कैसे?
इस बात में कि आप कितने ध्यान से जीते हैं, आपके रिश्ते कितने गहरे और ऑथेंटिक हैं, आप छोटी छोटी साधारण चीजों में कैसे खुशी और उद्देश्य ढूंढते हैं।
मतलब ग्रैंड जेस्टर्स की तलाश छोड़कर सिंपल चीजों को अप्रिशिएट करना। बिल्कुल,
यहाँ वास्तविक भेद्यता, जेन्युइन वल्नरेबिलिटी का महत्व बताया गया है।
वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरियां दिखाना।
हाँ, उसका साहस। जब हम परफेक्ट बनने का दिखावा छोड़ देते हैं, अपनी कमियां स्वीकार करते हैं, तभी सच्चे और गहरे रिश्ते बनते हैं, कनेक्शन तभी बनता है। और उद्देश्य को भी वो रीडिफाइन करती हैं। उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं बाहर रखी है और हमें ढूंढनी है।
अच्छा।
बल्कि वो है जो आप रोज अपने कामों से, अपने चुनावों से बनाते हैं। दूसरों की मदद करना, कुछ नया सीखना, वो काम करना जिससे आपको जिंदा महसूस हो, ये सब उद्देश्यपूर्ण हो सकता है।
ये बहुत पावरफुल सोच है। मतलब पर्पस खोजना नहीं, क्रिएट करना है।
हाँ, और यहाँ किन्सुगी का जिक्र भी आता है, वो जापानी आर्ट फॉर्म।
हाँ, जिसमें टूटे बर्तनों को सोने से जोड़ते हैं।
एग्जैक्टली, जिससे वो टूटने के बाद पहले से ज्यादा खूबसूरत और यूनिक बन जाते हैं। वीस्ट कहती हैं, हमारे जीवन की मुश्किलें, हमारे दुख, हमारी दरारें भी ऐसी ही हैं, उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि यही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा खूबसूरत, हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें यूनिक बनाती हैं।
क्या खूबसूरत मेटाफर है। तो ये आखिरी हिस्सा हमें अपनी भीतरी समझ को बाहरी दुनिया से जोड़ने में मदद करता है, एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जो हमारे लिए वाकई मायने रखता हो।
बिल्कुल।
तो इन सारी बातों से, इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य संदेश या टेकअवेज क्या है, अगर हमें 3-4 पॉइंट्स में समेटना हो?
हाँ, जरूर। पहला तो वही जो हमने शुरू में भी कहा और जो शायद सबसे फंडामेंटल है, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। प्राइमेसी ऑफ परसेप्शन।
परसेप्शन इज रियलिटी एक तरह से।
हाँ, हालात कैसे भी हों, आप उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे देखते हैं, यही तय करेगा कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो हम अक्सर भारत में भी सुनते हैं, नजर का फेर है सब।
सही। दूसरा पॉइंट।
दूसरा, भावनाओं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी गाइड है। इमोशनल इंटेलिजेंस एज ट्रू नॉर्थ। हर भावना, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, आपको कुछ जरूरी सिग्नल दे रही है, उन्हें सुने, समझें, दबाए नहीं।
ये बात शायद हमें खास तौर पे ध्यान देनी चाहिए ना, जहां अक्सर भावनाओं को खास तौर पे पुरुषों को दबाने की सीख दी जाती।
बिल्कुल। तीसरा, आराम नहीं, बेचैनी आपको आगे बढ़ाती है। एम्ब्रेसिंग डिसकम्फर्ट फॉर ग्रोथ। असली तरक्की कम्फर्ट जोन के बाहर ही होती है।
भारत में जैसे परीक्षा या करियर का इतना दबाव होता है, अक्सर हम उस तनाव से बचना चाहते हैं, पर शायद विस्ट कहेंगी कि उसे ग्रोथ के सिग्नल की तरह देखो।
हाँ, शायद उसे एक चैलेंज की तरह देखो जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। चौथा संदेश, सफलता और असफलता के मायने दुनिया से मत लो, खुद तय करो। रीडिफाइनिंग सक्सेस एंड फेलियर।
ये बहुत जरूरी है।
दुनिया के पैमाने, पैसा, पद, शोहरत, इन पर मत जाओ। देखो कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके अपने मूल्यों के हिसाब से सफलता क्या है। और असफलता अंत नहीं, सीखने का एक पड़ाव है, प्रोसेस का हिस्सा है।
हमारे समाज में जहां बाहरी सफलता, लोग क्या कहेंगे पर इतना जोर है, ये सोचना कितनी राहत दे सकता है।
और पांचवा, शायद ये कि आपके अनजाने विश्वास आपको रोक सकते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस बिलीव्स एंड सेल्फ सैबोटेज.
सबकॉन्शियस बिलीव्स,
हाँ. कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े होते हैं उन पुरानी सोच या डर की वजह से जिनका हमें पता भी नहीं होता. ये सेल्फ सैबोटेज जैसा होता है. टालमटोल करना या जानते हुए भी गलत आदतें दोहराना, ये शायद इसी का नतीजा हो सकता है.
हाँ, ये तो गहरे मुद्दे हैं. अच्छा, इस किताब में कई कोट्स या विचार ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कुछ यादगार लाइनें जो आपको खास लगें?
हाँ, बहुत सारी हैं. एक जो मुझे बहुत पसंद आई, उसका सार है, असली हीलिंग टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने में नहीं, बल्कि खुद को पूरा का पूरा अपनी कमियों समेत अपनाने में है.
मतलब परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़कर जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करना. वाओ.
हाँ, एक और विचार है बहुत ही मुक्त करने वाला, तुम्हें जाने देना सीखना होगा, चिंता छोड़ो, तुम वैसे भी कभी कंट्रोल में नहीं थे.
हाँ, ये तो सीधा दिल पे लगता है. आजकल की भागदौड़ और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में ये बात कितना सुकून देती है.
बिल्कुल, जो हमारे बस में नहीं उसे लेकर परेशान क्यों होना, अपना बेस्ट करो और बाकी जाने दो.
और एक विचार जो बदलाव की कीमत और इनाम दोनों बताता है. तुम्हारी नई जिंदगी की कीमत तुम्हारी पुरानी जिंदगी होगी. तुम्हें अपना जाना पहचाना सब कुछ छोड़ना होगा, लेकिन बदले में वो सब मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहते थे.
गहरा है. मतलब असली बदलाव हिम्मत मांगता है, आराम छोड़ने का साहस मांगता है, त्याग मांगता है.
सही. और ये वाला तो बहुत ही सरल पर कितना पावरफुल है. एक विश्वास सिर्फ एक ऐसा विचार है जिसे आप बार बार सोचते रहते हैं.
हाँ, मतलब हमारे गहरे विश्वास भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ दोहराए गए विचार हैं, हैबिट ऑफ थिंकिंग.
और अगर ऐसा है तो उन्हें बदला भी जा सकता है, नए बेहतर विचारों को चुनकर और उन्हें बार बार सोचकर.
एग्जैक्टली, ये बहुत उम्मीद देता है.
तो इन सब गहरे विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकली क्या करें?
बहुत छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं. जैसे अगली बार जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, मैं ये नहीं कर सकता या लोग क्या सोचेंगे, तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय बस एक ख्याल की तरह देखें.
ऑब्जर्व करें.
हाँ, जैसे अच्छा ये एक डर वाला ख्याल है, उसे आने दे और जाने दे, उस पर रिएक्ट ना करें, उसे जज ना करें.
और भावनाओं के लिए, जैसे गुस्सा आ गया या जलन हुई,
तो तुरंत कुछ कहने या करने के बजाय एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें, खुद से पूछें, ये भावना मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है. शायद गुस्सा आपको बता रहा हो कि आपको अपनी जरूरत जाहिर करने की जरूरत है. शायद जलन आपको बता रही हो कि आप असल में क्या चाहते हैं, आपको किस दिशा में काम करना है.
रिश्तों में भी ये काम आ सकता है ना, जैसे किसी दोस्त की परेशानी सुनते वक्त हम अक्सर तुरंत सलाह देने लगते हैं.
हाँ, जबकि शायद जरूरत सिर्फ ध्यान से सुनने की हो, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करने की. इसे स्पेस होल्ड करना कहते हैं. और मुश्किल रिश्तों को पहचान कर उन्हें जाने देने की हिम्मत जुटाना भी इसी समझ का हिस्सा है.
करियर में भी, जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये महसूस करना कि आप जितने काबिल दिखते हैं उतने हैं नहीं, अक्सर लोग इसे परेशान होते हैं.
हाँ, तो वेस्ट के नजरिए से देखें तो इसे अपनी कमी समझने के बजाय ये सोचें कि शायद आप कुछ नया और चुनौतीपूर्ण कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ये ग्रोथ का साइन है.
और सफलता को भी अपने लिए दोबारा परिभाषित करें. पूछें खुद से, क्या ये प्रमोशन वाकई मेरी खुशी के लिए जरूरी है या मैं सिर्फ समाज के दबाव में हाँ कह रहा हूँ.
एक छोटा सा उदाहरण लें. आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, अब आप गुस्सा कर सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं,
जो अक्सर होता है.
हाँ, या फिर सोच सकते हैं, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस खाली समय में मैं कोई पॉडकास्ट सुन सकती हूँ या गाने सुन सकती हूँ या बस शांत रह सकती हूँ.
या ऑफिस में किसी ने आपकी आलोचना की,
बुरा मानने या डिफेंसिव होने के बजाय एक पल रुककर सोचें, क्या इसमें मेरे सीखने के लिए कुछ है, क्या ये फीडबैक मुझे बेहतर बना सकता है. सोच का ये छोटा सा बदलाव आपके अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है.
बिल्कुल. तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या है?
मेरे लिए शायद यही कि हमारी आज़ादी, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो एक अंदरूनी काम है. हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं. और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो सच में हमारी दुनिया बदल जाती है, हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं.
बहुत खूब कहा. और मेरे लिए सबसे खास बात यह रही कि नकारात्मक भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें गाइड की तरह देखना कितना राहत भरा हो सकता है. उन्हें सुनना.
हाँ.
और ये कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं बल्कि मन की शांति और अपने मूल्यों के अनुसार जीना है, ये सोच ही अपने आप में बहुत आजाद करने वाली है, लिबरेटिंग है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए आज का सवाल यही छोड़ जाते हैं, अगर आपका जीवन बाहरी परिस्थितियों का नहीं बल्कि आपके विचारों का प्रतिबिंब है तो आज आप कौन सा एक विचार बदलने का चुनाव करेंगे, सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।